نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة آل عمران کی آیت نمبر 97 آپ کے سامنے رکھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہ آیاتم بینات, اس میں روشن نشانیاں ہیں. کس میں؟ خانہ کعبہ میں اور حج کے سفر میں. کیا ہے نشانی؟ مقام ابراہیم, ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ. اس میں کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کھڑا ہو جائے گا, اللہ اس کے قدموں کے نشان بھی محفوظ کر لے گا اور لوگوں کو اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے گا. گویا کہ استقامت کا ایک استعارہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان حالات میں اللہ کے دین کا کام کیا جبکہ لوگ نہیں کرتے تھے, نہ رواج تھا, نہ رسم تھی, اور نہ اس کے کرنے پہ کوئی عزت اور شہرت تھی, اور اصل کام ہوتے بھی وہی ہیں جو ان تمام منفی جذبوں سے اوپر اٹھ کر صرف اور صرف وقت کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے کیے جائیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی استقامت فی الدین دے. پھر اگلی بات فرمائی, وَمَن دَخْلَهُ كَانَ آمِنًا. دوسری بات, پہلی کیا ہے؟ آیاتم بینات ہے. وہ کیا ہے اس کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن اگلی بات کیا ہے کہ جو کوئی اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. پیس فل پلیس, ٹینشن فری زون. دنیا سکون اور امن کی تلاش میں بھٹک رہی ہے. کبھی شراب کے نشے میں امن ڈھونڈتی ہے اور کبھی نائٹ کلب کے اسیبی ماحول میں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ امن چاہیے تو تم مکہ کا ٹکٹ کروا لو. جتنے بھی دن وہاں رہو گے, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی کیفیت ہوگی. اور کیا کہا؟ وللہ علی الناس حج البیت. لوگوں کے ذمہ ہے, یعنی فرض ہے, لازم ہے کیا؟ کہ بیت کا, گھر کا حج کریں. یعنی حج کرنا لوگوں پر لازم ہے. کون؟ من استطاع الیہ سبیلا, جو اس کی استطاعت رکھتا ہو, جس کو راستہ معلوم ہو, جس کے ریسورسز پورے ہوں. وہ کیا ہیں؟ وہ اس وقت ضرورت نہیں بات کرنے کی, الحمدللہ الگ سے اس پہ بات ہو جاتی ہے. اور اگر نہیں کرتے تو کیا ہے؟ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور جو کوئی کفر کرے, جس نے انکار کیا, نشکری کی, تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے نیاز ہے. اس ایک آیت میں آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے آیاتم بینات. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی عبادات دی ہیں, جس کو ہم نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ایک ہی سٹریچ میں کہہ لیتے ہیں, ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی اثر ہماری زندگی میں ضرور آتا ہے. مثلاً اگر ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کو عقیدہ کہہ دیں, اس کو عبادت نہ بھی کہیں, تو پہلی چیز جو ہم کرتے ہیں دین کے نام پر وہ نماز ہے. نماز کا اثر انسان کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت 45 میں فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بلا شبہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. یعنی نماز پڑھنے کے بعد بے حیائی میں اور برے کاموں میں دل نہیں لگتا. پھر میرا کیوں لگتا؟ اس لیے کہ وہ نماز ہی نہیں جس کو سمجھتے نہیں ہیں. بے روح نماز تو کسی جگہ بھی اثر نہیں ڈالتی, تو لہٰذا اگر نماز کو اس کی اصل حالت میں پڑھیں گے تو اس کا اثر ضرور ضرور آئے گا, कि जिंदगी से फुहश और बेकार चीजें और लगवियात निकल जाएंगी और लगवी मोरदून की कैफियत जरूर आएगी ईमान वालों की सिफात की रोशनी में। और इबाद रहमान की सिफत कि ये लोग जब गुजरते हैं इजा मर्रू लगवी मर्रू की रामा, इज्जत से बंदा गुजर जाता है यानी गोया के लग में बैठ जाना ये बेइज्जती करवाने के लायक है। एक ईमान वाले का और एक नमाजी का टेस्ट इतना गंदा होता ही नहीं है कि वो किसी भी ऐसी फुहश चीज में आ जाए। खैर, ये तो था नमाज का असर। दूसरी इबादत देख लीजिए तो रोजा। रोजे का क्या असर आता है तबीयत पे? सूरत अल बकरा आयत 183 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम पर रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। क्यों किए गए ये रोजे? तुम्हारी जिंदगी में क्या असर छोड़ते हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। तो गोया कि मैं और आप कह सकते हैं कि रोजे की तासीर ये है कि इंसान के अंदर तकवा पैदा होता है। इंसान के दिल में ये एहसास रहने लगता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है और मैं अल्लाह ताला की निगाहों में हूं और मैं इन सारे कामों को करते हुए अल्लाह की निगाहों से छुपा हुआ नहीं। और वही बात जो भी आप में से किसी ने शेयर भी की कि अल्लाह मुझे देख रहा है, यही एहसास बंदे को सीधा रखता है। उसके बाद आप देखिए बाकी इबादत, वो चाहे जकात की इबादत हो, सदके की इबादत हो, तो आप देखिए कि वो दिल से माल की मोहब्बत को कम कर देता है। दिल से भी माल की मोहब्बत कम होती है और माल पाक भी हो जाता है। और हदीस में आता है कि मा नकसत सदका तुम मिम माल, सदका देने से माल कम नहीं होता, बरकत पैदा होती है। बल्कि लफ्ज जकात के अंदर ही पाकीजगी का मानी भी आता है और बढ़ोतरी का मानी भी आता है, नश्व नुमा होती है। तो गोया के देने से सब कुछ मिल जाता है यानी इंसान का माल पाक होता है। इन सारी बातों को सुनकर आपने यकीनन ये जरूर समझा होगा कि इस्लाम के अंदर जितनी भी बातें हैं वो एक से बढ़कर एक है। नमाज, जकात, रोजा और दीगर इबादात, इनकी अलग अलग बरकतें भी हैं। इनके रोशन पहलू हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, दुनिया की जिंदगी में भी इसके असर आते हैं और आखिरत में भी। और ये भी बात याद रखिए कि कोई एक इबादत दूसरी इबादत की जगह नहीं ले सकती। अगर कोई ये कहे कि नमाज पढ़ने से रोजे की जरूरत पूरी हो जाए, ये कभी नहीं होगा। और अगर किसी की ये ख्वाहिश हो कि जकात दे दूं नमाज की जरूरत पूरी हो जाए, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आइए देखते हैं कि नमाज, रोजा और जकात की तरह हज, जो दीन का एक बहुत ही बुनियादी रुकन भी है और बुनी अल इस्लाम अला खमसिन की रोशनी में हज को दीन इस्लाम का रुकन करार दिया गया, तो हज के क्या असरात इंसान की जिंदगी में आते हैं। लेकिन इसको सुनने से पहले ये याद रख लीजिए कि हज के असरात बताने से नहीं पता चलते, सुनने से ये बात समझ आ ही नहीं सकती जब तक के इसको करें ना। ये वो चीज है जिसको लेने के लिए जाना पड़ता है, इसमें से खुद गुजरना पड़ता है। सूरत हज आयत 27 में अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वह अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्जी, और लोगों में हज की पुकार लगा दो। फिर क्या होगा? या तू करी जालन, वो आपके पास पैदल भी चल के आ जाएंगे, यानी करीब के लोग हैं तो पैदल ही आ जाएंगे। औ अला कुल्ली दामिरिन, और दुबले पतले ऊंटों पर भी। कौन से? या तीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक, जो दूर दराज रास्तों से चले आते होंगे सवार होकर उन पर आएंगे। यानी इतनी दूर से भी लोगों को अगर आना पड़े कि उनके मोटे ताजे ऊंट चल चल कर दुबले पतले हो जाएं, तो लोग फिर भी आएंगे। वजह क्या है? लियशहदू मुनाफिया लहुम, ताकि वो खुद अपने मुनाफे का मुशाहिदा करें। यह है बात। हज के फवायद को जाकर खुद देखना ही पड़ता है, इसके बगैर बात नहीं बनती। कुछ चीजें होती हैं कहने से समझ आ जाती हैं, कुछ चीजें उसको समझने के लिए उसको चखना पड़ता है। बस आप देखिए कि किसी शख्स ने आम ना खाया हो, आप उसको 10 बातें आम की बताएं। आम ऐसा होता है, थोड़ा लंबा, थोड़ा गोल, थोड़ा चबूतरा, थोड़ा वो खरबूजे की तरह ऊपर से है, नीचे से खीरे की तरह है, उसके ऊपर एक छिलका होता है, अंदर गुठली होती है, उसकी इमली बनती है, उसका अचार बनाते हैं। कहते रहे, वो शायद इधर उधर देखने लग जाए कि ये क्या हुआ है। इतना कुछ बताने की बजाय आप एक मजे का आम सख्त सा पका हुआ काट के उसके आगे रख दे, तो फिर वो बातें वो बताएगा। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के घर के सफर के जो असरात इंसान के दिल पर आते हैं ना, ये भी उसको ही पता चलते हैं जिसने इसको चखा। जब हम वहां से होकर आते हैं तो हमारा दिल गवाही देता है कि हम क्या लेकर आए। इसके जो असरात है ना इंसान की जिंदगी में, वो इनकलाब बरपा करते हैं। यानी आप कह लें कि हज के असरात इनकलाब लाते हैं जिंदगी में। अपसाइड डाउन होने लगती है, शख्सियत बदल जाती है, फिर इंसान के किरदार में तब्दीली आती है, उसका करेक्टर बदलने लगता है, फिर इंसान की सोच बदलने लगती है, फिर इसी तरह हज इंसान के जज्बात को बदल देता है, हत्ता कि इंसान कुछ से कुछ होने लगता है। हज पर जाकर इंसान ये महसूस करता है कि मैं वो नहीं हूं जो मैं अपने वतन में था, मैं तो कुछ और ही हो गया हूं। कैसे? सबसे पहली चीज वहां जाकर जो आप महसूस करते हैं वो है सादगी। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप देखिए कि बैतुल्ला शरीफ एक बिल्कुल सादा सी इमारत है, काले रंग का कपड़ा, कोई खूबसूरती और फन तामीर का शाहकार वहां नजर नहीं आता। काले पत्थरों की एक इमारत जिसमें ना कोई खिड़की, ना क्रिस्टल, ना वहां कोई शेंगलियर लगा हुआ है, एक दरवाजा है जो शायद किसी ने कभी खुला भी ना देखा हो, और उस पर भी पर्दे पड़े हुए, लेकिन आंख है कि इसको देखने से थकती नहीं, सहरी नहीं होती, वहां से हटने को दिल ही नहीं जाता। वहां रहकर जितनी देर आप वहां रहें, 2-3 घंटे, फिर थकन होती है तो घर जाते हैं, होटल में जाते हैं, खाया पिया थोड़ा, सोए, फ्रेश अप हुए, उठे, फिर दिल लटकता है, चलो चलो वहां रश कम ना हो गया होगा, चलो इस वक्त शायद मुझे हिजरे अस्वद का बोसा मिल जाए, और आप फिर वहां आके बैठ जाते हैं। एक अजीब कशिश है, जैसे मिकनातीस में कशिश होती है। आप देखिए कि दुनिया में बड़ी बड़ी इमारतें मारूफ है ना, 7 अजायब तो आपने सुने ही होंगे, जिसमें हमें ताजमहल तक के नाम मिलते हैं, लेकिन अगर एक दफा आप किसी जगह को देखकर आ जाए, दोबारा चलेंगे किसी को दिखाने, उसके बाद दिल नहीं करता, बस देख लिया ना और क्या देखें। लेकिन इसमें कशिश है, ये भी अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को उनकी सच्ची दीनदारी का सिला दिया कि इस घर में लोगों के लिए कशिश डाल दी। तो लिहाजा बैतुल्ला से फायदे लेने के लिए इंसान के अपने अंदर का इखलास और तकवा लाजिम है। जो जितना इखलास और तकवा लेकर वहां गया, उतने ही फायदे उसको वहां दिखेंगे, और फिर हर बार नए फायदे दिखते हैं, ये भी याद रखिए। एक बार हज पे जाएंगे, आप शायद बिल्कुल अर्ली जवान थे, आप कोई और एक फायदा ले आएंगे, मिसाल है पक्के नमाजी होके आ गए, 2-4 साल बाद तमली जिंदगी में गुजर आ गए, एक दो बच्चा हो गया, फिर अल्लाह आपको वहां ले गया, तो वहां से हो सकता है कि आप दाढ़ी रख कर आ जाए, औरत है तो उसको हिजाब का शौक आ जाए, फिर आप जरा थोड़ी सी उधेड़ उम्र 30-40 के बाद गए, तो आपको हो सकता है वहां से दुनिया से बेरगबती मिल जाए। तो आप कह सकते हैं कि अपने घर में आने वालों को अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं भेजता। हम भी तो नहीं भेजते ना, कोई पहली दफा आए तो उसको बहुत ही देते हैं, जी आप हमारे घर पहली बार आए हैं, अच्छा जी अब क्या, अब आप हमारे घर बहुत देर के बाद आए हैं, इसी तरह होते हैं ना। तो क्या अल्लाह अपने घर आने वाले को खाली हाथ भेजेगा? शर्त एक है कि ईमान की ताजगी साथ लेकर जाए। अब हज करके आने के बाद मेरी जिंदगी में क्या तब्दीलियां आए, किस से मैं समझूं कि मेरा हज कबूल हो गया है, तो उसके लिए समझिए क्या मेरी जिंदगी में सादगी आ रही है, आ गई है? वो नरम गरम गद्दे, वो बिस्तर, वो मैचिंग चादरें, इस तकिए के बगैर नींद नहीं आती, उस तकिए के बगैर ये नहीं होता, उसके बाद ये नहीं होता, क्या अभी भी ये कैफियत है? वो मीना की रात तो बंदे को तोड़ के रख देती है, सच्ची जो बात है, माने के ना माने, ऐसे लगता है कि अब तो बिस्तर के ऊपर चादर की भी जरूरत नहीं है। यहां हमारे बड़े नखरे होते हैं, हम बहुत अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन आप वहां जाके आपको अपनी औकात पता चलती है। अभी है सिस्टर सईदा ने अपना मीना का मंजर सुनाया तो मुझे अपना याद आ गया, इतना पैदल चले थे, इतना पैदल चले थे, क्योंकि बसें ब्लॉक थी, हमारे साथ जब गए थे तो बच्चे भी थे, फैमिली थी एक दो, और बसें इतनी स्टक थी कि हम वहां से बस से निकलकर पैदल चलना शुरू हो गए, बच्चे भी उठाए हुए हैं, थोड़ा बहुत सामान भी है। चलते चलते अरफात से मुजदलिफा पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। और जहां आके देखा तो समझ ना आए कि यहाँ करना क्या। वैसे तो हम किसी सफर से आए तो पता होता जी होटल बुक है, ये कमरा तैयार है, ये घर आपके लिए, और वहां टॉवल तक लोगों ने रखे होते हैं, लेकिन यहाँ क्या। खैर यही सोना है। यकीन करें कि जिसको जहां समझ आई वो लेटा। लेकिन जो बात आपसे इस वक्त शेयर करना चाहती हूँ ना, वो क्या है कि जब सुबह उठे, यानी फजर के करीब उठना भी होता है उससे पहले, यानी जब दिन का उजाला जरा दिखा, तो देखा क्या कि हम लोग बिल्कुल कूड़े के ढेर के पास सोए हुए थे। रात को नहीं दिखा, लोगों का बचा हुआ खाना, चीजें जो लिफाफों में होती हैं, ढेर लगा हुआ था और हम उसके साथ सोए हुए। उस दिन पता चला कि हम क्या हैं। दुनिया में कितने नखरे नाक पे रुमाल रख लेते हैं बाज दफा, लेकिन इंसान की जिंदगी में सादगी आनी चाहिए। निकलिए इन तकल्लुफात से, थोड़े पे राजी रहें। इन्हीं ने तो पांव की बेड़ियां बनकर हमें अल्लाह के कामों से रोका हुआ है ना। और 20 जा लेंगे, अप टू डेट रखेंगे, मैचिंगिंग करते रह जाएंगे, एक एक धा एक एक वो कहते हैं ना कि तिनका भी उठाएंगे, तो फिर भी एंड ऑफ द डे बात वही है, वही रह जाता है। तो लिहाजा जरूरत है अपनी जिंदगी में हम सादगी लें, पुरतकल्लुफ जिंदगी से बचें, तईशात से बच जाना। हर वो कपड़ा जो पहन के चुभता है, अब वो दे दें किसी और को, अभी जिसका शौक नहीं पूरा हुआ। हर वो कपड़ा जिसको पहन पहन कर इस्त्रियां कर करके पहनना और पहन के भी कॉन्शियस रहना है, वो किसी और का नसीब है, अब मेरा नहीं है, क्योंकि मुझे तो भागना है, मुझे तो चलना है। फिर इंसान हकीकत पसंद हो जाता है। यहां लोग आपको सलामे करें, हाथ मिलाने को तरसे, वहां लोग आपको जानते भी नहीं, आपके पाँव पे पाँव रख के चले जाते हैं। फिर पता चलता है मेरी औकात तो ये, मैंने जो फील किया जी, कि वहां से आकर इंसान को ये खुशफहमी नहीं रहती कि मैं बड़ी चीज हूं, फलाने मुझे पूछा नहीं, फलाने मेरा हाल नहीं पूछा, कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह के घर में जाकर हमें पता चल गया कि हमें को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। फिर इसी तरह आप देखिए कि इंसान जब वहां से आए ना, तो उसकी इबादात में हुसन आना चाहिए। पहली नमाजें और हज करने के बाद की नमाज एक नहीं होनी चाहिए। अगर पहले नहीं पढ़ते थे, पक्के नमाजी बनना है। ये नहीं हो सकता कि अब ना हो। तो चंद बातें जो हमने बड़ों से भी सुनी हुई हैं और मुशाहदे से भी हैं, कि हज कबूल होने की कुछ अलामतें होती हैं। अब ये चीजें जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये ना तो कोई हदीस ना कुरान, ये सिर्फ वो बातें हैं कि जो मुशाहदे से भी दिखती हैं, और अगर आप देखें तो कुरान और हदीस के मुताबिक ही है। कि इंसान जब हज कर कर आता है और उसका हज अगर कबूल हो जाए, तो उसके बारे में पहली चीज जो सामने आती है ना, वो क्या है कि इंसान के आमाल में बेहतरी पैदा हो जाती है। फराइज और वाजिबात की अदायगी में जितना एहतमाम पहले था, अब इससे ज्यादा होने लगता है। और गुनाहों से बचने की जितनी पहले कोशिश थी ना, अब इससे ज्यादा होने लगती है। अगर आपको अपने अंदर ये चीज महसूस हो रही है, तो मुबारक हो कि आपका हज कबूल हो रहा है। लेकिन ये नहीं कि अभी कबूल हो रहा है, 2-3 माह बाद ये सब छोड़ दें तो उस दिन गैर मकबूल भी हो जाएगा। ये नहीं होता कि एक दफा नेकी करके हम अल्लाह को कह दें हो गया तो हो गया और फिर छोड़ दें। अल्लाह नहीं गाफिल हमसे, वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलुन ज़ालिमून, और इस तरह की आयात आती हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं हूं। तो ये चीज अपने अंदर नोट कीजिए। फिर इसी तरह एक और अलामत भी है, और वो क्या है कि वहां दोबारा जाने का शौक बढ़ जाता है। हम सब अपने अमाल को देखें, क्या तब्दीली आई है, क्या अब दोबारा दिल चाहता है वहां जाने को? बहुत चाहता है, हर एक का दिल चाहता है, हकीकी बात है। इंसान का दिल चाहता है कि कमी रह गई है, अब इसको जाके पूरा करने की कोशिश करूं। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और बात भी हमने सुनी हुई है, कि जिनका हज कबूल होता है उनकी कंकरियां उठा ली जाती हैं, और जिनका नहीं कबूल होता उनकी कंकरियां वहां पड़ी रहती हैं, वल्लाहु आलम। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान को फिक्र लग जाती है। फिर इसके बाद आप देखिए कि हज कबूल होने की एक और अलामत है, कि हज में इतने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को देखने के बाद अल्लाह की मखलूक से प्यार हो जाता है, यानी आपका कुंबा बढ़ जाता है। मैं तो वल्लाह ही यही समझती हूँ कि अल खल्कु ए आलुल्लाह, कि अल्लाह की जो मखलूक है ना, ये अल्लाह का याल है, और अल्लाह मुझे तेरे सारे याल से बड़ा प्यार है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई मुसलमान है, कोई काफिर है, कोई फाजिर है, कोई है, लेकिन अल्लाह तेरा बंदा होने के नाते उससे मुझे बड़ा प्यार है। आप अपने अंदर ये तब्दीली देखें, नहीं है तो लाएं, अल्लाह के बंदों से प्यार करें। इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं उन मल्टी कल्चरल लोगों से मिलिए जिनको पहले नहीं मिलते थे। चले इस्लाम से शुरू कर लें, मसलन सोमाली सिस्टर्स हैं, अफ्रीकी सिस्टर्स हैं, बंगाली सिस्टर्स हैं, जिनको आप पहले नहीं मिलते थे, अरब सिस्टर्स हैं, मिलिए और साथ मुस्कुराएं। हाँ, ऐसी बहन मैंने हज में भी देखी थी, ऐसी भी है। तो इस्लाम की बेस पे मिलना है, ना कि कल्चर की बेस पे। इस्लाम हमें रंग और कौम में नहीं उलझाता, बल्कि दूसरों के साथ मिलना है। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज जो हमें इसमें हज से मिलती है, और वो क्या है कि यूनिटी, अपनी मर्जी छोड़कर दूसरे की मर्जी को इख्तियार करना। हज का असल जो थीम है ना, वो यूनिटी ही है। इतने मुख्तलिफ किस्म के लोग एक आवाज पे, कद कामत सलात, कद कामत सलात, यूं खड़े हो जाते हैं कि सब मर्जियां छुटती हैं। वहां रंग का फर्क नहीं, जुबान का फर्क नहीं, एक ही सफ में खड़े हो गए सब, महमूद और अय्याज, सब एक सफ में, अमीर भी है तो गरीब भी है, इमाम काबा भी वही है और गुनाहगार आसी बंदा भी वही है। तो लिहाजा इत्तेहाद, इज्तमाईयत का सबक है वहां। फिर इसी तरह उम्मत का दर्द लेकर आता है इंसान वहां से, कि अल्लाह इतने लोग हज पे आए हुए हैं और अभी तक इनकी नमाज भी ठीक नहीं, अभी इनको तहारत का भी नहीं पता, अभी ये हिजाब और लिबास की पूरी शरई पाबंदियों को भी नहीं जानते। अल्लाह मुझे उम्मत बनकर कुछ करने वाला बना दे। और फिर आप देखिए कि हज के जितने अरकान, अगर उनको सामने रख के इब्राहिम और उनके घराने को सामने रख ले, तो फिर तो आप कह लें कि हमारी जिंदगी हज के बाद सिर्फ मेरा, मैं और मेरा घर, मेरी बच्चे, मेरा घर, मेरी जन्नत, सुबह क्या खाएंगे, दोपहर को क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, इस पे नहीं रह जाती। आप हकीकत में वही जिद्दोजहद जो हज के दिनों में करते हैं, उसको अपनी पूरी जिंदगी पे फैला लेते हैं। ये बहुत बड़ा सबक है, ये अब आपके आने वाले दिनों से पता चलेगा। हज से पहले अगर हफ्ते में एक दिन दीन था, 5 वक्त की नमाज और इब्तदाई इबादात के सिवा, तो अब उसको जरूर बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेगा। अगर सिर्फ सुबह थी तो शाम भी होगी, सिर्फ वीकडेज थे तो वीकेंड भी होगा, 4 दिन थे तो अब 7 दिन भी होंगे। क्योंकि फफिर्रु इलल्लाह का एक ऐसा सबक लेकर इंसान आता है अल्लाह के घर का तवाफ करते हुए कि वो रुक ही नहीं सकता। कुल इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस रंग में डूबता है बंदा कि अल्लाह मैंने सिर्फ ये 2 हफ्ते का पैकेज नहीं लिया था, 3 हफ्ते का पैकेज नहीं लिया था, मेरा ये पैकेज जो था अब जिंदगी भर का पैकेज बन गया। देखिए ना, अगर आपको कोई कहे कि आप हर साल हज करना चाहेंगी, आप में से मेरे गुमान के मुताबिक एक सिस्टर या ब्रदर भी ऐसे नहीं है जो कहें कि नहीं, मैं हर साल नहीं जाना चाहती। हम कहेंगे क्या ये मुमकिन है, इज इट अलाउड, इज इट पॉसिबल? यस, इट्स पॉसिबल। अब जिस हज के लिए आप में से जितने भी लोग अपने अपने मुल्कों से गए, सोचिए कितना खर्च किया आपने। डॉलर्स में बात कर लें, 3 से 5 हजार डॉलर, या शायद अब तो इससे भी ज्यादा, 10 हजार डॉलर तक की शायद खबरें हैं। पाउंड्स ले लीजिए, क्रोन ले लीजिए, पाकिस्तानी रुपीस ले लीजिए, दरहम ले लीजिए, इतना कुछ खर्च करके हर साल आप जाने को तैयार हैं, तो क्या मुफ्त में पड़ी हुई अल्लाह के दीन की नेकी, जाहिदु फिल्लाही हक जिहादिही, इसको छोड़ देंगे? वहां आप हजारों खर्च करके आ गए, तो क्या आपने अल्लाह के दीन पर खर्च करने के 100, 200, 50, 500 हजार को आप भूल जाएंगे? जिम्मेदारियां छोड़कर नवाफिल अदा करेंगे? और बाकी भी छोड़ दीजिए, देखिए वहां जाके दिल में जो जज्बे आते हैं ना काम करने के, तो अल्लाह ने तो यहां भी मवाके रखे हुए। वहां तो बहुत हैं जो अल्लाह का घर साफ करते हैं। मक्का तो अल्हम्दुलिल्लाह बुतों से भी पाक है, शिर्क से भी पाक है, अभी तक बिदात से भी बहुत हद तक पाक है। क्या मैं और आप अपने अपने मकामात पर, अपने अपने इलाकों और शहरों कि गंदगी नहीं दूर करना चाहेंगे। अभी इस घर को साफ करने ले कितने को हाथ है, जो हम वहां की सफाइयां करने को दिल चाहे, हम यहां की सफाई क्यों नहीं कर लेते? हम वहां जाकर ही कबूतरों को दाना क्यों डालना चाहते हैं? हम अपनी अपनी जगह की मखलूक को नेकियां करवाकर, नेकियों की रغبत दिलाकर जानवरों और परिंदों पर रहम क्यों नहीं करते? तो बात यह है, बड़ी बात की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी नेकियों को मानते जाइए। ओके, ठीक है अल्लाह जी। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का जो सबक वहां से पढ़ के आए हैं उसको यहां दोहरा लें। हर कॉल पे लब्बैक, आपको इस वक्त आना है लब्बैक, आपको इस वक्त जाना है लब्बैक, आपको ये करना है लब्बैक, आपको यहां रुकना है लब्बैक, आपकी ये जिम्मेदारी लब्बैक, आपकी ये नई जिम्मेदारी लब्बैक, आपने ये जिम्मेदारी अपनी खुशी से ली है, इसको निभाइए लब्बैक। क्या आप अपनी जगह छोड़ना चाहती हैं, कोई और आपकी जगह पे आ जाए? नहीं, ये नहीं होगा, बल्कि लब्बैक। ये छोटी छोटी नेकियां जो हमारी नजर में अभी छोटी हैं, ये बहुत बड़ी बन जाएंगी कयामत के दिन, क्योंकि हम इसके जिम्मेदार हैं। हम इसे हर एक अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें। आप देखिए, बस दफा हम माल जमा करते हैं ना, किस लिए करते हैं भला? चलो कोई बड़ा खर्चा आ गया तो पूरा कर लेंगे, वो बड़ी जरूरत है वो पूरी कर ले, सदका कर देंगे। आप जरा एक लम्हे के लिए लिखिए, पैसे होंगे तो आपसे जवाबदेही है ना, जब है ही नहीं तो पूछेगा कौन आपसे? कोई तवक्को भी नहीं रखता। जिनके पास होता है, नजरें भी लोगों की उन पे ही लगी होती हैं। अल्लाह की भी नजरें मेरे और आपके माल पे नहीं है। आप जो काम नहीं कर सकते थे, शुक्र कीजिए अल्लाह ने उसका मुकल्लफ नहीं किया, जो कर सकते हैं उसका अल्लाह पूछेगा। वक्त का कोई पैसा नहीं है, वक्त लगाया कि नहीं लगाया, कितना लगाया, ये अल्लाह पूछेगा। आप देखिए ना कि आपका वक्त अल्लाह के रास्ते में लगता है, तो वो सारा वक्त आपका अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है ना, उधर उसकी आपकी पे जमा हो रही है, और वहां आपके नंबर्स लग रहे हैं कि इनकी कितने चेक जाने हैं। अगर आपने उसको कट डाउन कर दिया, अब आपको उसके दुनिया में कागज के टुकड़े मिलने लग गए। जरूरतें तो कभी पूरी नहीं होती, लेकिन नेकियों के मौके कम हो जाते हैं। इसी तरह आप देखिए कि आपकी गैर मौजूदगी किसी काम को कमजोर कर दे, और आप उसके बरक्स ताकत की दवाइयां खा खा कर अंदर से भी सेहतमंद हो जाएं, क्या उस कमी का इजाला होगा? असल बात यह है, हज का पैगाम यही है कि मायूस नहीं हो, अपने अमाल को देखो, अपने आज को कल से बेहतर कर लो। अगर कल वाली हालत ही आ जाए फिर भी कोई बात नहीं, तौबा के दरवाजे खोलें। आज बैठे बैठे मैं और आप भी गुनाहों से पाक हो सकते हैं। जैसे एक हदीस में आता है कि हज करके आने वाला ऐसे हो जाता है जैसे उसकी माँ ने आज उसको जन्म दिया, तो मैं और आप भी कर सकते हैं। और वो क्या? अन्नदमुत तौबा, ताइब अत्ताइबु मिना जम्बी कमल्ला जम्ब लहू। मिश्कात की रिवायत है, हदीस नंबर 2363, के गुना से तौबा करने वाला ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसने कभी गुना किया ही नहीं। तो क्या ये मेरे लिए मुमकिन नहीं? ये वो नुस्खा है कि जो मिट्टी को सोना बना देता है। मिनटों में इंसान पाक, आप अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। आपको इतनी मेहनतों और मुजाहिदों और रियाजतों से बचा कर अल्लाह ताला इतनी आसानी से सिन फ्री करता है तौबा करके। जितना ज्यादा हम अपने पिछले आमाल पर अपना मुहासमा करेंगे, उतना अल्लाह ताला हमारा दिल खोलेगा। फिर आप देखिए एक और चीज, शुक्राना। शुक्र तो करे इंसान, हज की बात हो रही है तो अल्लाह तूने हज पे बुलाया, तेरा कितना शुक्र। तो क्या अल्लाह तूने मुझे स्कूल में बुलाया, इस पे कोई शुक्र नहीं? तूने मुझे मस्जिद में नमाज के लिए बुलाया, इस पे कोई शुक्र नहीं? तूने मुझे कुरान पढ़ा दिया, इसका कोई शुक्र नहीं? तूने मुझे अपनी किताब की खिदमत के लिए चुन लिया, इस पे कोई शुक्र नहीं है? तो फिर ये तो नशुक्री की बात है ना, नशुक्री की बात है। तो लिहाजा जरूरत है इस बात की कि हम जो नेमत हमारे पास है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक बात है हज करना और एक होता है हज का कबूल करना, बहुत फर्क है दोनों बातें। आप सारे कवायद और जवाबित के साथ हज कर ले, कोई चीज ना छोड़े। वकूफ अरफा भी आपसे हो गया, तवाफ जियारा भी कर लिया, कुछ नहीं छूटा, लेकिन फिर भी लाजमी नहीं कि आपका हज कबूल हो, सवाब मिले। क्यों? क्योंकि हो सकता है बीच में कोई रुकावटें हो, नाफरमानी। तो दो चीजों का एहतमाम हमारे बड़े करते थे और लाजिम था कि वो करें, और एक है उसमें पेट को नाजायज चीजों से पाक रखना, और दूसरा 5 वक्त की नमाज। जाने से पहले 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते थे, अब तौबा कर लिए, अल्लाह पे मामला। लेकिन जो 5 वक्त नमाज ना पढ़े और हज करे और हज के बाद आकर अब नमाजें छोड़ दें, तो एक एक करके आप अपनी हज की वो सारी मेहनतों को डिलीट कर देंगे। लाइन शकर तुम लाजीद अन्नकुम। अपने अमाल में अगर बेहतरी महसूस हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह नेमतों को बढ़ा देता है। सूरह इब्राहिम की आयत 7 में आता है। फिर और शौक आएगा। फिर एक और काम भी करें कि कसरत से गाहे बगाहे जिक्र करते रहें अपने हज का घर में, खास तौर पे जो साथ गए थे। उससे क्या होगा कि नेक अमल का जज्बा होगा, एहतसाब आएगा और गुनाहों से नफरत भरेगी और खैर के काम बढ़ते जाएंगे। और बल्कि जो वहां नियतें की थी उसको लिख के घर में खूबसूरत जगह पे लगा दें, अच्छे से हैंडआउट्स में, क्योंकि इंसान जब किसी जगह से गुजर होता है तो उसके जज्बात और होते हैं, बाद में बदल जाते हैं। तो जो नियतें थी, खुद एहतसाबियां थी, उनको लिख के लगा दें। आप देखेंगे कि उससे फायदा क्या होगा कि आप बेहतरी महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आपको ये सब कुछ समझ आएगा। आप एक आखिरी बात करती हूँ क्योंकि वक्त मजीद नहीं लेना चाहती, कि सहाबा कराम का भी तो हज था ना, और उस हज का क्या तरीका था। इंशाअल्लाह कहीं मौका मिला तो हम इस पे भी बात करेंगे कि सहाबा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने और उसी घर में रहने और उस जगह से फायदा उठाने में क्या हिकमत थी, और उसका फिर उनकी जिंदगी में असर क्या आया था। बस आज इतने को काफी समझें और ये दुआ करें कि अल्लाह तू हमें बेहतरीन तौर पे हाजी बना, ना के पाजी बना। और आपको हैरत होगी कि लफ्ज हज का मानी इरादा करना होता है। हज आपने भी इरादे किए हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला हमें हमारे इरादों में पूरा उतारे। जजाक अल्लाह खैर वसन जजा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अल्लाह ताला आप सब की कोशिशों को कबूल करे, जो भी लोग साथी जिस मुश्किल में, अल्लाह ताला उसे निकाले, और जो भी हमारे रास्ते की रुकावटें उनको दूर करके अल्लाह ताला हमें इस किताब से जोड़े। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।